जरूरत नहीं है। क्यों? चार प्रकार के लोग भगवान का भजन नहीं कर सकते। जन्म ऐश्वर्य स्त्री भी एधमान मद कुमार, जिनको खूब धन संपत्ति रहती है वो भगवान का भजन ऐसते हैं उसी गर्व के मार्ग में। और एक दिन जब सब चला जाता है तो हा है कठिन, इसीलिए बचते हैं। तो जिनको धन का मद है, जिनको अपने रूप का अभिमान है, ऐसे स्त्रियां और ऐसे गुरु ऐसे रूप के मत वाले भगवान का भजन नहीं करते। जिनको अपने जाति का मत है, मैं उच्च कुल का हूं, और जिनको अपनी विद्या का मत है, उन लोगों को मत के मारे कुछ सुहाता नहीं है, वो भगवान का भजन नहीं कर सकते। यह मत उन्हें नहीं था सुदामा दूत में, वो तो भगवत भक्त थे, उनको परिचित की जरूरत नहीं। उनकी पत्नी कहीं से मांग भी पकड़ लाती, ये कभी कोई चेष्टा नहीं करते। आना होगा अपने आप आ जाएगा, नहीं आएगा तो चेष्टा से ही नहीं आएगा, परम संतोषी थे। और ये कहीं से मांग भी पकड़ लाती, रसोई फॉर्मेसी बनाती, अपने पति के लिए देती। पति देखता ये थोड़ा सा है, मैं क्या खाऊं, थोड़ा सा मुख में जब दे उसके लिए थोड़ा सा रख दे, इसे न उनका पेट भरता न उनका पेट भरता। वो दुखी थी हमारे पति की कोई सेवा में नहीं करता, और वो बड़े दुखी थे हमारी पत्नी को मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि हमको समय नहीं है। दिन रात भजन में समय चलाया जाता है, दुख में भजन हो सकता है, सुख में होना बड़ा है। इसलिए हमें लोग नहीं करते, क्योंकि सुख में रहते हैं। देवता लोग भी भगवान का भजन नहीं करते, उसमें डूबे रहते हैं, अहंकार के मत में रहते हैं। इसलिए पत्नी ने कहा, प्रभु एक बार बार हम अपने सपा के पास तो जाए, मैं नहीं जाता उनके पास में कुछ मांगने की। अरे मांगना नहीं, वो तो ब्राह्मण के प्रति बड़े उनकी करुणाशील है, आप जाएंगे देखेंगे जो भाग बच जाएगा। बड़े चिंता में पड़े, उसने राजा अच्छा एक लाभ तो होगा, क्या लाभ होगा? परम लाभ कृष्ण का दर्शन इसी बाहर मिल गया, मैं मांगूंगा कुछ नहीं। इस बाने भगवान का दर जेन तेन उपाय का कृष्ण मनोरंजन, कोई भी उपाय हो उसके उपाय के द्वारा भगवान का दर्शन जरूर हो जाए, भगवान के प्रति प्रेम हो जाए, वही उपाय सबसे ऐसा शुभ करके हो जाए। और सुना ना, मांगा कुछ नहीं, दूसरे दिन अपने चरण कृष्ण ने रानियों के साथ उनके पैर पकड़े, जहां पर बलदेव नहीं जा सकते उस पलंग पर जहां पर अपने बैठते हैं उनको बैठाया, और 16108 रानियां भी घड़े से लेकर के सोने के घड़े से चरणों को पखार रही है, कृष्ण पखार रहे हैं। कितनी तरह की मीठी मीठी बातें कर रहे हैं, दूसरे दिन बिना कुछ लिए हुए ऐसे ही भेज दिया, एक पीली धोती उसमें एक रुपया भी और चावल भी यदि पीला बांध देते तो भी एक बात थी। मित्र ने सोचा और ब्रह्मी को क्या करें, अच्छा वर नहीं दिया। एक पर पूछे दालियों में अंगूर है तो वो क्या कहता है, भीतर लोमड़ी लोमड़ी क्या कहती है, ये खट्टे अंगूर है क्योंकि मिल नहीं जा, तो वैसे मानू वो पा रहे हैं ये अच्छा हुआ नहीं दिया, अशुभ करके जा रहे हैं। और कृष्ण ने कैसे उनका घर भर भर दिया, उनकी स्त्री परम रमणीय युवती हो गई, उसके लिए तम सुख बैठे पूरी हो गई थी, किशोरी की उम्र में ही परम सुंदरी हो गई, और उसके घर में 16108 भर हो गए। एक एक रानियों ने दे दिया, 16108 घोड़े बंद गए, हाथियां बंद गई, और वैसे ही सब कुछ उनका भर गया। सगरे जब वो अपने घर पर पधारे तो उनकी रानी जैसी पत्नी और उनकी सोने के थाल में आटी की वस्तु लेकर के सहेलियों के साथ में गान बजाना करती हुई वहां पर आई। ये कौन आया मेरी तरफ में, संकुच तो करके पीछे हटने लगे, और वो आगे बढ़ रही है, मुस्कुरा रही है, फिर ये हमको पहचान ले रहे हैं। थोड़ी देर के बाद में उनको पकड़ फेंक दिए और उनके गले में माला दिए। स्पष्ट होने के साथ ही साथ में उभिन हो गए। अब उन्होंने देखा ये मेरी पत्नी है और वो ऐसा कृष्ण ने क्यों किया, उनकी पत्नी को तो ज्योति बना दिया, इनको क्यों नहीं ज्योति बना युवक बनाया। इसलिए कि पत्नी पहचानने से ही ठीक है, पति ना पहचाने तो अभी कोई बात नहीं है, पत्नी पहचानने से उसमें कोई गड़बड़ी नहीं होगी। और यदि पत्नी ने पत्नी को नहीं पहचाना तो उसका पापी धर्म नष्ट हो जाएगा। इसलिए तो विचार करके उनको उनकी पत्नी को पैसा कर दिया, उनको नहीं लगाया पीछे से इसके पक्ष से। तो ऐसे बिना मांगे हुए कृष्ण देने वाले हैं, लोग डरते हैं। रुक्मिणी ने कहा था यतन आपने कहा जैसे जितने अपनी कुल तरीके लोग हैं वही पूजा करते, हम लोग मेरा पूजा नहीं करते, हम सब सर्वस्व छीन लेते हैं। इस डर के मारे हम लोग दुर्गा जी की पूजा, काली की पूजा और शंकर जी की, गणेश जी की ये सब पूजा करते हैं, कृष्ण की पूजा डर के मारे नहीं करते हैं। किंतु प्रभु आपने सुदामा के ऊपर बिना मांगे हुए नहीं दे दिया, पांडव को बिना मांगे ही समस्त पृथ्वी का राज्य आपने नहीं दे दिया, आप तो बड़े भगदानी है। उन लोगों से भी ये गणेश जी हैं, दुर्गा जी हैं, शंकर जी हैं, ब्रह्मा जी हैं, किसके बल पर देते हैं, कृष्ण के बल पर देते हैं। कृष्ण जब उनको देने की शक्ति ना रखते हैं तो वो लोग दे ही नहीं सकते हैं। कृष्ण का नाम करके जो उनको आश्वर्य प्राप्त होता है, इसलिए कृष्ण से बढ़कर के कोई बड़ा देवता नहीं है। जो कृष्ण का भजन नहीं करते, देवताओं का भजन करते हैं, वो अंत में ठगे जाते हैं। उनको इस लोक में भी शांति नहीं मिलती, उस लोक में भी शांति नहीं मिलती। वो लोग दयालु नहीं है, क्यों नहीं, उनसे बीस मांगो तो बीस दे दे, रावण को दस फिर दे दिया ना, उससे उसका भला हुआ, सोने की लंका दे दी क्या भला हुआ। ईश्वर को देखो भक्ति दे उनका जीवन बन गया। ऐसे ही प्रभु बड़े दयालु। आपने सुना अभी ये दिव्य बंदर का उपाख्यान, दिव्य रामचंद्र जी का पार्षद था, रामचंद्र जी के पुल बांधने में और लंका में लड़ाई युद्ध करने में उन्होंने बहुत सेवा की, किंतु लक्ष्मण जी की कुछ निंदा थी और उसका यह फल हुआ उसकी बुद्धि बिगड़ गई, अस्त्रों का संग करने लगा, काल जवन जरा संभव दुर्योधन दूषा संसपनी का ये सब संग करते 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 एकदम बिगड़ गया। इसलिए कुसंग में मत जाओ कभी भी। जो लोग भक्त हैं, जो पदाचारी हैं, वो जिस रूप में धनी हो या गरीब है उन्हीं से कृपी लो, और नहीं तो बुद्धि बिगड़ जाएगी, भगवान की भक्ति नष्ट हो जाएगी। अंत में बलदेव जी चिल्ला रहा है, आपने सुना बलदेव जी तिथियों का भ्रमण करते 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 कुरुक्षेत्र में गए और वहां पर वो लोग हर्षांताज ने उनका आदर नहीं किया, उठे नहीं भागवत पढ़ रहे थे। बलदेव जी का आदर नहीं किया तो बलदेव जी ने कहा मैं जगत गुरु मैं स्वयं भगवान, आपको भागवत पढ़ रहा है तुमको इतना कांत ज्ञान नहीं है तो उनका आदर करना चाहिए, और तुम रुक करके खड़े होकर का भी भागवत नहीं किया, तुम भागवत कुछ नहीं जानते हो, तुम्हारा पढ़ना बेकार का है, बस उनका गला हाथ बेकार तो रोगी करके मर गया है। तो वहां के ऋषि लोग उनसे प्रार्थना किया प्रभु अब हम किसे भागवत सुनेंगे, अच्छा ठीक है, पशुसी का एक छोटा सा पुत्र था उसके ऊपर में सिर पर हाथ दे दिया है और बोले जितने विद्या है विश्व की सब तुम्हारे अंदर में वेदों की विद्या है, तुम भागवत का परम पंडित होगा और तुम ऋषियों को समस्त भागवत वेद परिषद शास्त्र का श्रमण तुम करा दे। इस उनका नाम हो गया सभा के एक बार कहने से उनको कभी भी जीवन में कोई चीज भूलता नहीं था, उनको स्मरण रहता था। अंत में ये सुखदेव गोस्वामी से उन्होंने परिचित की सभा में कथा देखी हुई थी। ये इसलिए यदि भागवत पढ़ करके भी वैष्णव का आदर नहीं किया, भगवान का आदर नहीं किया, बैठ करके पाठ कर रहे हैं और गुरु जी या कोई उत्तम श्रेणी का वैष्णव आया भक्त आया आदर नहीं किया तो उसका सर्वनाश होना जरूरी है। हमने ये मथुरा पुल में देखा है, संत लोग हम लोग सब लोग मिलकर के कहीं गए, कोई पुजारी किसी जगह का नाम नहीं लेंगे, वो पुजारी माला लेकर के ऐसे निकाल करके ऐसे जैसे फिर देता है ऐसे फिर देते छूटे नहीं है। मैं बहुत पवित्र भातों की सेवा करता हूं, घर में कामना है जाना पैसे के लिए लोग नौकरी करते थे पूजा करता है और वैष्णवों का अनादर ऐसे करते हैं, ऐसे लोगों का सिंह बलदेव जी का उनको ज्ञान नहीं चाहता है कि कौन भक्त है कौन अभक्त है। अपने को स्नान करने से ही और साधु जी की पूजा करने से ही और अपने को पवित्र मान लेते हैं। पवित्र तो है जो सर्वत्र भगवान का दर्शन करके भगवान का ही सबको ज्ञान करके सबके अंदर में भगवान का दर्शन करता है, केवल शिला पूजा से नहीं। इसलिए सब में भगवान की भावना रख करके जो सबके प्रति परम उदार है भगवत भक्ति का दान करते हैं वो सबसे सर्वोत्तम है। ये भी जाए और भी गोपियों के संबंध में सुना आप लोगों ने, गोपियां कुक्षेत्र में गई, कृष्ण यही सुना कि ब्रजवासी लोग नंद बाबा और गोपियां आई और जो सुना मैया आई बधक वहां पर सबको छोड़ दिया। वहां पर कितने बड़े बड़े भक्त लोग थे, कुंती भी थी और भीषण पितामह जी और सब उनके सगे संबंधी सब लोग थे, किसी के तरफ में नहीं देखा और सुना जो मैया आई मैया नंद बाबा है पर सबको छोड़ करके वहां से दौड़े और दौड़ करके इधर में गाड़ी खड़ी हो गई। नंद जो सुना गाड़ी से उतरे और जाकर बेटा 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 कर करके कन्हैया कन्हैया और कृष्ण मैया मैया का कर उनके गुरु में गए गए और वो अंतर से छिपा करके और रोने लगी गुलाब नंद बाबा के चरणों में बलदेव जी गिर गए, उन्होंने गोदी में उनको उठा दिया। इस प्रकार से दोनों मिलने लगे, उन्होंने पर रुक्मण रोहिणी जी आती हुई देव की आई, उन्होंने दिखा ली हमको आज तक कृष्ण मैया कहा ही नहीं कभी, हमारे हाथ से कभी मक्खन और रोटी खाया नहीं और आज इसको देख करके जसोदा को और मैया मैया का करके विलाप कर रहा और वो भी इसको बेटा बेटा कर करके अपने अंचल में अपने दुखपात में बंद कर रखा है। हम ये हमारे बेटे को लेकर के कहीं कितना चली जाए, बड़ी मक्खन से किसी प्रकार से हमने बचा करके इसको चुरा करके रखा है फिर वही कहीं में चली जाए। इसलिए जसोदा जी को और कृष्ण दोनों को सुना करके कह रहे हैं अरे बेटा कृष्ण ये देखो ये हमसे भी अधिक हमारा तुम पुत्र हो और हमसे भी अधिक तुमको ये स्नेह करके आंख की पुत्री के तरफ देखता रहा। इन्होंने अपना और पराया का कोई विचार नहीं रखा, तुम पुत्र को मेरे हो किंतु तुमको पुत्री की भांति ये प्यार किया कहने का तात्पर्य हो जाए। कृष्ण सुन ले कि मैं देवी का पुत्र हूं जोशोदा और जोशोदा भी सुन ले कि ये मेरा पुत्र है। देखा वही मेरे इस मामला का गौरव होता उनका प्रेम भाव बिगड़ जाएगा, ये बाधा डाल रही है मान आगे से अरे सखी बैन अरे देखो कुंती जी खड़ी है और सब लोग खड़े हैं तो मिलने के लिए चलो हम लोग करें और उनको भी सांत्वना दें और घर में केवल इसके पास में रहने के काम नहीं चलेगा चला जिससे पूरा इसे कहा करते और उनको अपने साथ मिल करके निकल गए। जसोदा जी से मिली जसोदा से मिलने के बाद जसोदा जी ने देखा मनी मन में सूर्या यदि एक सेकंड की देवी होती होगा तो अभी वे गोपियां बने बड़े धैर्य से इतने की नौका किसी प्रकार से यहां तक आई है अब एक सेकंड रहने वाली नहीं है। जैसे कोई बहुत दूर से गोठा लेकर के आता है जब अपने द्वार पर पहुंचता है तब रहा नहीं जाता बाहर से ही दरवाजे पर भी लोग देख देता है ऐसे ही ये निकट में जब पहुंच जाए अब ये बचेंगे नहीं ऐसा देख करके उन्होंने बलदेव जी कहा पकड़कर वहां से चली गई यदि वहां रहती ना तो तब फिर प्रेम गड़बड़ हो जाता है इसलिए वहां से चली गई। इसके बाद भी गुरु मुझसे मिली और जैसे जैसे बातें हैं बहुत अभी बहुत इसमें बातें हैं गोपियां जी के कुछ रुष्ट होकर के कृष्ण को जैसे ब्रह्म का ज्ञान सुनाया कुछ रुष्ट हो गए जैसे हम क्या संसार में पड़ी हुई है हमको जो ब्रह्म का ज्ञान देते हो किसको ब्रह्म का ज्ञान देना चाहिए आपको पता नहीं है। मैं बालकपन से ही हम लोग आपके चरणों में अनुरक्त हैं हम आपको एक सेकंड के लिए नहीं भूल सकते और आप कहते हैं कि आप संसार में जो पड़े हुए उन लोगों के लिए हमारी चरण कमल ही उनके लिए मौका स्वरूप है तो हम आपको भूली कब और संसार में गरीब कब हमको ये चाहती है आपके चरण कमलों से अपने चित्त को हटा लें
आप जैसे हटा रखा है हम लोग भी हटा करके मरण छुट्टी हो जाएगी, चिंता हम तो निकाल नहीं पाती, हम लोग बर्बस्त आपकी चिंता करती हैं। इसलिए हमारा संसार कहाँ है? ऐसा ज्ञान जो रूप दो, आप एक ज्ञानी हैं, ऐसे ज्ञान हमको नहीं चाहिए, हमारा मन और हृदय एक। इसलिए आप जब वृंदावन रूपी हमारे मन में जब वहां पर चले वृंदावन में और हम चले तभी हम लोगों का यह विरह दूर हो सकता है और किसी उपाय से नहीं हो सकता। कृष्ण बोले देते ठीक, हमारे प्रति जो भक्ति करते हैं वो संसार में सब कुछ हम लोग हमको वो जीत लेते हैं, किंतु उनको तो हमारे अंदर में भक्ति के बाद में स्नेह प्रेम राग अनुराग भाव है। मैं तो भगत तुमसे लोगों से विचार हुआ तुम्हारे बची हुई हूँ, जब ऐसा प्रेम है स्नेह तुम्हारे अंदर आए और मैं अभी प्रेम नहीं मार सकता, बहुत जल्दी से जल्दी मैं आ ये कर करके अपने मनोरथ पर कृष्ण को चढ़ा करके और गंदा बन ले आई और इस प्रकार से आई। ये रथ यात्रा के निगुण लीला में इसका वर्णन होता है। इस प्रकार से कृष्ण की लीलाएं आज तक यहाँ पर हुई, इसके बाद में एक लीला भी और आएगी। सब देवताओं के अंदर में ऋषियों के अंदर में यह संदेह था कि सबसे पूजा कैसी पहले की है, सबसे श्रेष्ठ देवताओं में कौन, किसी ने शंकर को बताया, किसी ने गणेश जी को बताया, किसी ने कार्तिकीय जी को, किसी ने दुर्गा जी को, किसी ने अंबिका जी को, किसी ने किसको बताया, निर्णय नहीं होता था। भृगुषि के ऊपर में ये भाग लिया, भृगुषि दौड़ करके अपने पिताजी के पास में पहुंचे ब्रह्मा जी के पास और ब्रह्मा जी को प्रणाम किए बिना उनकी गति पर बैठे, तो ये बड़ा उदंत हो गया। तो जब तुमको संपात देता हूं ब्रह्मा पिता को तुम आदर नहीं देते, कुछ क्रोध हो गए वहां से भक्त करके आए शंकर जी के पास, शंकर जी उनके गुरु हैं, शंकर जी के पास में उनको प्रणाम करना का रूप कर रहा है। शंकर जी ने आओ बेटा आओ आप तो बैठ बैठो उनके शिष्य हैं, बोले कहां से आ रहे, कहां से आ रहे, आपको मतलब क्या है? खगड़ी सबसे मुंड माला पहनने वाले, सबों की माला पहने हुए और भस्मशान किया वो भस्म अपवित्र भस्म का समय लगाने वाले सब अपवित्र लगाने वाले, आपसे हमारा संपर्क क्या है? अरे भगवान तुम हमको ऐसा कहते हैं, अपने गुरु को ऐसा कहते हैं, तुम हमारा स्वरूप नहीं जानता। 3500 लोग समाज से बने और फिर समुद्र में नारायण के पास में यहाँ पर लक्ष्मी जी के अंत में अपने पैरों को लेकर के बड़े आराम से सो रहे हैं और उन्होंने आओ न देखा न पाओ आगे न पीछे अपने दाई हाथ पैसे एक उनके छाती पर नहीं पैरना माते ही सब छत उठ गए और उनके चरण पकड़ लिए। कहो कितनी कोमल से कोमल आपके शीशन और हमारा बस पत्थर वज्र से भी कठोर, ये आपको चोट लगा होगा, आप मुझे क्षमा दीजिए। वह क्षमा मांगते ही वो एकदम रोने लगे इनके चरण के पर, ऐसी क्षमा आपकी अपेक्षा और किसी में नहीं हो सकती, इसलिए आप समस्त देवताओं के भी आप पवन देवता है, इसलिए भूल करके भी जो आपको छोड़ करके दूसरों की पूजा इत्यादि करते हैं वो लोग भूल करते हैं, इसलिए आपकी की पूजा करनी चाहिए। ऐसा कर करके देवताओं के और ऋषियों के समाज में आकर के उन्होंने घोषणा की कि विष्णु कृष्ण ही राम ही ये विष्णु तत्व यही नारायण है, यही समस्त देवताओं के वास्तव है। देवता लोग और सब लोग उन्हीं के बल पर दूसरों को कुछ देते हैं, इसलिए इन्हीं की उपासना भी करेंगे। इस प्रकार से सब लोगों ने विष्णु की कृष्ण की सबसे सर्वोत्तमता स्वीकार करके उनकी पूजा में लगे। आज बहुत विलंब हो गया है, कल भी आज भी की भांति कथाएं होंगी और शाम को भी कथा होगी और उनसे कल समाप्त नहीं होगा, फिर परसों समाप्त होगी। सवेरे आप लोग सभी लोग जैसे प्रतिदिन आते हैं वैसे आते हैं, ऐसे ही सवेरे 7 बजे यहाँ पर उपस्थित हो जाएंगे। 1.5 घंटा का कथा होगी, इस प्रकार से हम समापन करके प्रार्थना करके प्रसाद
क्या विधि ना परा फल छिपा सुकाम मस्ते चरणा यजंतमुपेतमेत जैपायनो विरह का कर्याजुहा नारायणं नमस्कृत्य सर्वैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जगद्गुरुः तवैवास्मि न जीवामि त्वया विना इति विज्ञानराधे त्वं मां चरणम्। श्रील गुरु पार्षद की कृपा से और साथ ही साथ में श्री गुरु गौरांग गंधर्व का दुधारी राधा विनोद दुहारी जी की कृपा से हम लोगों का आठवां दिन, सात दिन हम लोगों के निर्विघ्न रूप में बड़े आनंद के साथ में हरि कथा श्रवण करते करते और कीर्तन के माध्यम से ये व्यतीत हुआ। तनिक भी कोई विघ्न बाधा कुछ भी नहीं। हम लोग नौ स्कंध पर कथा सुनने के बाद में दसवें स्कंध में पूर्वाक्त को ब्रज लीला को समाप्त कर मथुरा की लीला को भी समाप्त कर द्वारका के लीला में प्रवेश हम लोगों ने किया। वहां पर कृष्ण का विदा, बलदेव जी का विदा और उनकी संतान संपत्ति इत्यादि के संबंध में पुरी महाराज जी का उपाख्यान, बलदेव जी प्रभु का तीर्थ में भ्रमण करना इत्यादि हम लोगों ने श्रवण किया। लोग इन्हीं कथाओं का स्मरण करके भवसागर से अनायासी पार हो जाते हैं। मालूम नहीं होता कि कब हम भवसागर से तर गए। जब उस पार जाते हैं तो देखते घोषपत तुल्य हो जाता है, जैसे गाय के बछड़े का खूब उसमें पानी रहे, आदमी अनाशी पार हो जाता है। उसी प्रकार से इस संसार में विचरण करते हुए यदि भगवान की कथाओं का श्रवण किया अनाशी विश्व ये संसार को मन नहीं हो। यदि भगवान की कथाएं सुनी जाए, भगवान का नाम किया जाए, तो अपने जितने भी प्रारब्ध अप्रारब्ध और जितने भी कर्म हैं उन सब से वो पार होता है। योगियों को, ब्रह्मज्ञानियों को अपने प्रारब्ध कर्म का फल भोग करना पड़ता है। वो नहीं क्षय होता बिना भोग किए हुए, किंतु भगवान के नाम के प्रभाव से अनायासी या इन भगवान की कथाओं को सुन करके अनायासी भव सागर से अभी पार उनको इसका फल नहीं भोगना पड़ता। अज्ञानी को कौन सा भोगना पड़ा, वाल्मीकि जी को कौन सा अपने प्रारब्ध कर्म का फल भोगना पड़ा, नारद जी को कौन सा भोगना पड़ा। अनायासी भगवान का नाम करके भव सागर से विघ्न बाधाओं को देने वाले उन लोगों के सिर पर भी और जम के मृत्यु के सिर पर पैर रख करके चले जाते। इसलिए भगवान अपने जाने के बाद में अपने अप्रकट लीला में प्रवेश करने के बाद में अपनी कथाओं को भागवत रूप में छोड़ जाते हैं। इसलिए इनको भागवत रूपी सूर्य बन जाएगा। कृष्ण जब भी चले गए उन्होंने भागवत को छोड़ दिया, इससे संसार का मंगल। अब हम लोग चलते हैं। हमने सुना कि कृष्ण गुरु कुल में गए, सात कलाओं की विद्याओं को सात दिनों में ही वो पारंगत हो। कृष्ण सुदामा जी के साथ में गुरुकुल में पढ़ने का भी लीला है। जब वो समावर्तन हुआ, आजकल जैसे यूनिवर्सिटियों में समावर्तन होता है, फंक्शन होता है, जब भी पढ़ाई से लिखाई समाप्त हो जाती है उनको डिग्री देकर के छोड़ दिया, तो ये सब हमारे शास्त्रों में पहले से ही है। तो समावर्तन, समावर्तन माने सब कुछ विद्या इत्यादि अध्ययन करके गुरुकुल से अपने गृहस्थ आश्रम में जब लौटते हैं घर में, उसको समावर्तन करते हैं। तो जब लौटने गए कृष्ण अपने घर पर, तो क्या उनको दें? कृष्ण ने कुछ देना चाहा, गुरु पत्नी और गुरु जी ने कहा हम ये सब सांसारिक चीजें नहीं लेंगे, हमने सुना है अलौकिक आपकी क्रियाएं हैं, आप हमारा एक पुत्र प्रभास में हम लोग स्नान करने गए और वो वहीं पर समुद्र में नदी में कैसे बह गया उसका कुछ पता नहीं चला, आप हमारे उसी पुत्र को लेकर के देखें। कृष्ण सोच विचार करते हैं, अच्छी बात बस एकदम चले गए प्रभास के, वहां पर पता लगाया तो पता चला कि एक राक्षस उनको निगल गया पानी में, देख
दिया
शंखासुर, बस गए शंखासुर को देखा और उसे युद्ध में मार करके उसका पेट चीर करके देखा, उसमें कुछ भी हार दो या कोई भी अवशिष्ट नहीं, कहा गया अब उसका पता लग रहा है के लिए संजीवनीपुरी में गए जम के पास, वहां जाकर के देखा जी वहां पर भी नहीं है, फिर सिद्ध लोक में गए जिसको ब्रह्मलोक कहते, ब्रह्मलोक उसको कहते हैं जी जीवात्माएं अंत में ब्रह्म में मिल जाती है, कुछ लोगों की ऐसी धारणा है, उस सिद्ध लोक में वहां जाकर के देखा जे उसे जाकर के पूछा पता चली हाँ, तो वहां से भी लेकर के उसे चले क्यों ले आए, मुक्ति में जीव ब्रह्म में मिल गया ऐसा कहते हैं, जो नदियां अपना नाम रूप छोड़ करके समुद्र में जैसे लीन हो जाती है, पानी में जैसे पानी मिल जाता है, बृहद पानी में क्षुद्र पानी मिल जाता है, ऐसे ही जीवात्माएं ब्रह्म ज्ञान के द्वारा भगवान ने अपना नाम अस्तित्व छोड़कर के उसको मिल जाए। भागवत के अनुसार में अभी हम जिस भागवत का प्रवचन हम लोग कर रहे हैं उसके अनुसार में जीव के लिए सबसे गंभीर, सबसे भयानक और सबसे दुखदायी अवस्था है, हम लोग पड़े हैं, हम लोग हैं, चलते हैं फिरते हैं खाते पीते आनंद करते हैं, और ऐसा इंजेक्शन भर दिया जाए जो दिन भर रात भर बस बिछौने पे पड़ा रहे और फिर हो सकता है फिर होश होने के बाद में फिर इंजेक्शन लगा देते हैं और वो दिन रात बस पे कुछ पता नहीं, ये स्थिति अच्छी है न खाएंगे पॉप पिएंगे भगवान का भजन करेंगे घर घर डोलेंगे सब लोगों से प्रेम पूर्वक रहे, कौन ऐसा चाह सकता है, बेवकूफ व्यक्ति ऐसा चाह सकता है, ब्रह्म मिल करके अपनी सत्ता को खो दे, भगवान ने देखा कि हमारा गुरुपुत्र उस स्थिति में चला गया है तो हमारी बड़ी बदनामी हो गई, हमारे गुरु का पुत्र इस स्थिति में है, इसलिए वहां गए और वहां से उसको पकड़ लिए और पकड़ करके फिर इस जगत में ले आए, वही मधुमंगल जी हैं शांतिनी के प्रतिदिना में पीछे से ताकि ये तो द्वारका की लीला है मथुरा की, वहां पर उज्जैन में ये बातें भी थी, तो ये तो ब्रजलीला के बाद में होती, ये कैसे संभव हुआ, ये तो उलट फेट हो जाता है, तो समझिए जब सबसे पहले कृष्ण की लीला इस जगत में प्रकट हुई थी उस समय की ये बात है। जब जब ब्रह्मा का एक दिन होता है तब ये लीला होती है, इसलिए वो प्रारंभिक रूप में हुई। समझ में आएगा कि नहीं? सोमवार है पहले ना मंगलवार है, जब मंगलवार से आरंभ करें तो अंत में सोमवार है, और सोमवार से आरंभ करें सोमवार के बाद में मंगलवार है। इसलिए साइक्लिक ऑर्डर में प्रत्येक बिंदु ही पहला और अंतिम हो सकता है। इसलिए यहां पर वो प्रश्न नहीं होगा, इसलिए वो मधुमंगल जी को लेकर के आए जो कृष्ण लीला में कृष्ण के साथ में विदूषक के रूप में रहते थे और कृष्ण का और सब लोगों का मनोरंजन किया करते। ये लीला हम लोग पहले सुन चुके हैं। अब जब कुरुक्षेत्र में सब लोगों का समागम हुआ, इसके बाद में हुआ, तो देवकी जी ने कृष्ण से कहा, हमारे 6 पुत्र हुए थे इसके पहले और कंस दुराचारी ने हमारे 6 पुत्रों को मार डाला, इसलिए तुम गुरुपुत्र को ले आ सकते हो तो हमारे इन पुत्रों को भी ले आओ। मेरी बड़ी साध है कि अपने गोद में बैठा करके उनका लालन पालन करो। उसमें भी अच्छी बात है, मैं भी जाता हूं। बस वो चले गए और जाकर के जमपुरी से उन लोगों को ले आए। ये लोग थे कौन और क्यों मरे? ये लोग मारीचि के पुत्र 6 थे। मरीचि ऋषि जो ब्रह्मा के पुत्र हैं, एक समय ब्रह्मलोक में ब्रह्म की सभा में सृष्टि करते समय ब्रह्मा जी ने एक बड़ी सुंदरी किशोरी लड़की को प्रकट किया। माया के रूप में जगत का मोहन करने के लिए सृष्टि की, किंतु इतनी सुंदरी रूप था, उसका सुंदर रूप था, अलौकिक रूप था, मानो ब्रह्मा जी ने अपनी समस्त कलाओं को समीट कर और उस लड़की को बनाया। जब वो प्रकट हुई बस देखते ही रह गए उसके तरफ, एक तक से आंख की पलक नहीं गिर रही। ये मरीचि के पुत्र माने उनके नाती 6 और भी समान लोग बैठे थे, देख करके हंसने, अरे देखो तो ये बूढ़ा बाबा अपनी इस छोटी सी लड़की के को कैसे देख रहा है, भूख करके देख रहा है, किस रूप में देखते हैं मृत पुरुष लोग, बद्ध जी इसकी कल्पना नहीं कर सकते। जाति रही भावना जैसी हर मूर्त देखा, कामी व्यक्ति विश्व ब्रह्मांड को काममय देखता है, एक साधु पुरुष जगत को साधु पुरुष के रूप में देखता है। जैसे जिसकी भावना है, एक चोर सब जगत को चोर ही देखता है, एक दुष्चरित्र व्यक्ति जगत को ही दुष्चरित्र देखता है, ऐसा ये नियम है। इसलिए उन लोगों ने अपनी भावनाएं ब्रह्मा जी के ऊपर में, जिनसे वेद निकले हैं, शास्त्र निकले हैं, भगवान के प्रिय भक्त हैं, एक तरह से मुक्त हैं, और उनके ऊपर में वो अपना विचार थोप दिया, हम जैसे हैं वैसे हैं। ऐसे लोग, बहुत से लोग अपराध करते हैं, इन अपराधों से बचने की चेष्टा करनी चाहिए, लोगों का गुण देखना चाहिए, दोष कभी मत देखो, दोष है तो रहने दो, तुम उसका गुण देख करके उससे सारग्राही हंस की भांति सार को ग्रह, ये भागवत का विचार है। और यदि तुम उनके दुर्गुणों को देखेगा तो होगा क्या, उनके दुर्गुण तुम्हारे अंदर में आ जाएंगे और तुम्हारे सुख चीजें उसमें से। इसलिए विषय लोगों के दुर्गुणों को नहीं देखो, निंदा मत करो और उनकी प्रशंसा भी मत करो। भक्तों की प्रशंसा करो, भगवान की प्रशंसा करो, उनका गुणान बात करो। ये आदि बहुत धनी है, प्रशंसा करने की जरूरत नहीं है, धन मैल है, बल्कि भगवत भगवान को भुला देता है, इसलिए प्रशंसा की जरूरत नहीं। ये आदमी बहुत बड़ा भारी दानी है, जैतिक लोग इसकी प्रशंसा कर सकते हैं, किंतु मृग महाराज के अवस्था को जानने वाले लोग उन दानों को तनिक भी ना करते हाँ करिए ये भगवान नाम कर रहा है, भगवान की भक्ति में बहुत प्रवीण है, ये सब प्रशंसाएं होनी चाहिए। इसलिए ब्रह्मा जी ने कहा अरे दुष्ट कहीं का अपनी भावनाओं को हमारे पर मिला रहा है, जाओ तुम असुर बनो और तुम्हारा पिता ही तुमको मारेगा जिसके आज जन्म देगा, बस वो जन्म लिया कहां पर लिया, नकसुपु के कालहारी के कालनेमी के पुत्र के रूप में जन्म, फिर नकसुपु से उनका कोई संबंध नहीं। इसलिए दूसरे जन्म में अपने पिता के हाथ से काल लेने के हाथ से मारे गए, तीसरे जन्म में वो काल लेने हुआ कंस और वो छह पुत्र जो थे वो सरगर्भा के नाम से देवकी के गर्भ में आए। क्यों? क्योंकि ब्रह्मा जी का साप और वरदान दोनों का तात्पर्य एक है, इनका कल्याण हो। नाग ऋषि किसको साप देते हैं, किस लिए देते हैं,
दिया दो चपत तो लगा दिए किंतु उसको करुणा करके ये किया कि इस जन्म में कृष्ण से उसका संबंध हो जाए और उन लोगों का सहजी उद्धार हो जाए, इसलिए देवकी के गर्भ में दिया और कंस ने उनको मारा। इसके बाद में बलदेव प्रभु जी आए, मारने के बाद में तो वो चले गए जमलोक में। इधर में बलदेव जी आए, इसके बाद में कृष्ण आए। अब कृष्णचंद्र जी से उन्होंने प्रार्थना की जिसे हमारे बच्चों को ला दीजिए, कृष्ण गए और उनको ले आए। छोटे छोटे शिशु जिस रूप में मारा गया था वो मारे गए थे उसी रूप में ले आए और बात्सल्य से उनका हृदय द्रवित हो गया, दूध उनका चुचू आने लग गया, बेटी जी ने सबको अपनी गोदी में लिया और एक एक को जो ही अपना स्तन स्पर्श कराया दूध हो गया उनके मुख में, साथ ही साथ में उनका उद्धार होता गया। शरीर छोड़ करके अपने उस मरीची के लड़के के रूप में थे, उस रूप में वो होने लगे। क्यों हुआ? क्योंकि कृष्ण ने एक बार देवकी जी का स्तनपान किया था। कब किया था? बचपन में जब जन्म हुआ तो मैया ने देखा कि गोकुल में जाएगा, ये बतलाया गया था, बच्चा जाएगा बिना खाए पिए जाएगा, उसका गला सूख जाएगा, इसलिए गोदी में बैठा करके कृष्ण को वो थोड़ा सा स्पर्श अपना स्तन करा दिया था। इसके बाद में कृष्ण ने कभी भी देवकी के स्तन नहीं पान किए, इसलिए अब वही दीफा जो स्तन था वो जम ही एक एक मुख में देते हैं और क्यों ही अपना शरीर छोड़ करके और उनको उससे मुक्ति लाभ करके अब चले जा रहे हैं कहां, मरीचि के पुत्र के रूप में एक एक और पहले छह का ऐसे हो गया। इसका हमारे शास्त्रकारों ने वर्णन किया है, सुमन शिवानंद ने बतलाया था कि भक्ति के कुछ स्तर होते हैं, ऐसे भक्ति नहीं होती और भक्ति का एक ऐसा स्तर है जहां पर पहुंचने पर भगवान मिल जाते हैं। आदौ श्रद्धा तत साधु संग अथा भजन क्रिया ततो अनर्थ निवृत्ति निष्ठा रुचि आसक्ति और प्रेम। प्रेम के बाद में भगवान देते हैं श्रद्धा निष्ठा रुचि अनर्थ निवृत्ति पहले श्रद्धा साधु संग श्रद्धा निष्ठा अनर्थ निवृत्ति इसके बाद में रुचि इसके बाद में आसक्ति इसके बाद में भाव और अंत में प्रेम होता। प्रेम होने पर भगवान से प्रसन्न होता। अब ये आठ हैं, आठ में से दो निकाल दिए, बाकी रह गए छह। साधु संग के बिना श्रद्धा नहीं होगी। साधु संग के बाद में श्रद्धा होती है। ठीक, पहले साधु संग कैसे? अनजान में किसी प्रकार से उनको पानी दे दिया, उनका सत्कार आदर किया, ठाकुर जी को पपीत दिया, यहां पर हरि कथा सुनने के लिए आए, भागवत की पूजा कर दी, संतों को कुछ दे दिया जो भगवत नाम पारायण है, सुकृति से साधु संग, साधु संग से फिर अब प्रगाढ़ सत्कार हो, फिर गुरुकरण होगा, इसके बाद में भजन क्रिया होगी। भजन क्रिया के बाद में अनर्थ दूर हो जाएगा। मैं ये शरीर हूं, मैं ही शरीर ये हूं, और संसार के प्रति आसक्ति दूर होने लग जाएगी। इसको अनर्थ निवृत्ति कर रहे हैं। जब ये सब दूर हो जाएगा तब आएगी रुचि। रुचि में अब परिश्रम नहीं होगा, नींद नहीं आएगी, ये सब प्रमाद इत्यादि नहीं होगा। और रुचि के बाद में प्रगाढ़ आसक्ति होगी। आसक्ति के बाद में यह आसक्ति तक हुआ छह पुत्र। अब इसके बाद में भाव हुआ, यह हुआ बलदेव जी आए, और प्रेम में कृष्ण आठवें स्थान। इसलिए इन चीजों को बतलाने के लिए आठ पुत्र हैं, जिसमें अंतिम कृष्ण का जन्म है, उनका दर्शन है, भाव भक्ति होता है बलदेव प्रभु जी, और उसके पहले जो छह है ये ईश्वर गर्भालु। इसमें कंस कौन सा है? काल नेमी भय। बिनु क्या? बिना भय के प्रीति नहीं होती। बिनु भय हो या न प्रीति, बिना भय के प्रीति नहीं होती। आदमी अपना कुसंस्कार दुर्गुणी नहीं छोड़ेगा कैसे? बिना भय के डर के। आदमी कोई पाप से डरता है किस लिए? कहीं नरक न हो जाए, दुख भोगना पड़ेगा, माता पिता की सेवा करना चाहिए, माता पिता की जिन्होंने सेवा नहीं की उनको अनंत काल तक नरक जाना पड़ेगा। ये बातें डर है, भय है। इन भयों से हम लोग इन दुर्गुणों से पापों से बचते हैं। तब कौन सा है भय? भय के मारे हम इन सब चीजों को छोड़ करके, और तब ये सब साधन भजन करते हैं। इसीलिए यहां पर छह जो हैं ये सब दुर्गो ये सब चीजें हैं, स्तर हैं भक्ति के, और ये सब होता है भय के कारण। यदि कंस नहीं होता, नहीं मारते इन लोगों को, और देवी से संपर्क होकर के कृष्ण से संपर्क नहीं होता, तो इन लोगों का उद्धार नहीं होता, फिर भगवान का पाना बड़ा कठिन है। इसलिए ये सरदार भावों को कृष्ण ने के स्तन पान से उसका जूठा थोड़ा सा जूठा मिल गया, और इसीलिए इनका उद्धार। इस तरह से देवकी अब बड़ी प्रसन्न हो, उनके पुत्रों का मंगल। इसके बाद में वो पहुंचा। एक दिन की बात है, द्वारका में बड़ा जोर से चारों तरफ में चर्चा चलने लगी। एक सिद्ध महापुरुष हमारे द्वारका में आया है, बड़ा सिद्ध, देखने में युवक तो है किंतु सिद्ध महापुरुष, जिसको जो कर देता है वही हो जाता है, किसी से बोलता नहीं है, आंख नहीं खोलता, बस ध्यान में मग्न रहता है। देखने में बड़ा सुंदर सुकांत है किंतु सिद्ध महापुरुष है। इधर में कृष्ण की छोटी बहन बलदेव जी की छोटी बहन सुभद्रा जी आपकी सोरी लड़की हो गई, विवाह का उनका समय हो चुका है, हुआ है। पिता माता चिंता कर रहे हैं वे किसकी शादी कर रहे हैं, वर बूढ़ रहा है, चारों तरफ में अच्छा योग्य सुभद्रा के लिए तो साधारण वर से काम नहीं चलेगा ना, बहुत योग्य होना चाहिए, कृष्ण की बहन है, अच्छा कोई वर नहीं मिल रहा। बलदेव जी को बलदेव जी ने सोचा हमारा शिष्य बड़ा सुंदर है और गदा युद्ध में भी पारंगत है, उसका नाम दुर्योधन है, बहुत ही कुरुवंश में एक बहुत अच्छा लड़का है, मैं उसी के साथ में इसकी शादी करूंगा। बलदेव जी तो अब बड़े हो गए हैं ना, वसुदेव देवकी उग्रसेन अक्रूर और कृष्ण इत्यादि सबका विचार है कि किसी भक्त से योग्य से लड़के से यदि अर्जुन से इसकी शादी हो जाए तो बहुत अच्छी, अर्जुन सब विषय में योग्य है, अर्जुन ही है, सुंदर भी है, महात्मा भी है, इसलिए उसके शादी। किंतु बलदेव जी के डर के मारे कोई भी कुछ नहीं कर रहा है, सब लोग शांत बैठे हैं, यदि बलदेव जी गड़ गया तो फिर मुश्किल हो जाएगा, इसलिए कोई नहीं कर रहे। बलदेव प्रभु जी आदान प्रदान कर रहे हैं सब बीच में, ठीक है, बड़े उत्साह के साथ में सुभद्रा का विवाह उसे करने के लिए वागदान भी दे चुके हैं, ये इसकी शादी उसी से हम लोग करेंगे, और पिता माता से भी कह दिया इसकी शादी उसी से हो, तो इन लोगों ने हां भी नहीं कहा। उन्होंने सोचा जब मौनम सम्मति लक्षणम, हां ठीक है मौन हो तो ठीक है, कृष्ण ने सुन करके भी कुछ नहीं सुना, उनकी कुछ भीतर से इच्छा है। अब ये सिद्ध योगी की चर्चा चारों तरफ में चल रही है, सब लोगों ने सुभद्रा से कहा, घर की भाभियों ने कहा, भाभियों ने सप्तभामा रुक्मिणी प्रभु के लिए कहा, जो देखो ननद ये शुद्ध जो भी आया है तुम इसके पास में जाओ और उसको प्रसन्न करके तुम वर ले लो, जिसको तुम चाहेगी उसी से तुम्हारा ब्याह हो जाएगा, अतः तुमको चलो हम लोग ले चलते हैं, सब लोग लेकर के उसके पास में गए, ये प्रणाम नाम करके और मन ही मन में कुछ प्रार्थना कर रहे हैं। इतने में देखा गया क्या, वो जो भी जोगड़ा छोड़कर अपने बच्चों को छोड़कर हाथ में धनुष बांध दिए थे, एक रथ पर बैठ गया और इसको भी खींच करके बैठा दिया, जिस प्रकार से कृष्ण ने रुक्मिणी को बैठा दिया और लगाम इसके हाथों में दे दिया घोड़े और अपने धनुष बांध दे करके बैठ गए, यदि कोई आया तो हम देखेंगे। जो उन्होंने सुभद्रा जी ने रथ इंद्रप्रस्थ लिए हुआ हाथ दिया, अब चारों तरफ में हो हल्ला हो गया, अरे ये क्या हुआ, वो जोगी नहीं, वो तो अर्जुन है और उसको लेकर के चला जा रहा है, आज तक ऐसा नहीं हुआ जो जंतुवंशियों में आकर के कोई ऐसा काम किया हो। बलदेव जी को खबर लगी, होंठ फड़फड़ाने लगे, दांत कलमली होने लगी और रंग एकदम लाल हो गया, देखो तो इस सर्प को हमने पाला पुरुषार्थ दे दिया, अपनी मैत्री से इसे बताया और ये काल सर्प अपने को ही हम लोगों को ही दर्शने जा रहा है, हमारे कुल में धब्बा लग गया है। हमारी लड़की को, हमारी बहन को हम लोगों के सामने से देखते ही आओ लेकर के उड़ चला। अब देखो तो दयनीय रात चला रही है और भी क्रोध हुआ। कहा ठीक है, फल मुसल लिए, चतुरंगड़ी सेना को हाँक दिया। अर्जुन के लिए चतुरंगड़ी सेना के जो रुकन में अकेले ही उसके लिए काटती हूं। बस हल मुसल लेकर के बड़े पेट से जब दौड़ने लगे तो कृष्ण ने कहा कि भैया कहां जा रहा हो, कहां जा रहे हो? आखिर तुम जानता नहीं है, देख नहीं रहा हमारी बहन को हम लोगों के सामने से, इतने वीरों के बीच से हम और तुम और सब लोगों को अपमानित करता हुआ बहन को लेकर के चला जा रहा है और तुम चुपचाप बैठे हुए हो। ये तो क्षत्रियों का काम है, आपने रुक्मिणी हरण में आपने ऐसा नहीं किया। अरे कल की तो बात है, शाम के विवाह के समय में आप क्यों गए उसके यहां? शाम ने शाम को पकड़ लिया और युद्ध हुआ, उसमें खुद ही आप गए। कहा जो बहुत अच्छा हुआ आपने ऐसा कर, आपने उषा का विवाह कैसे, उषा का अनिरुद्ध जी का विवाह कैसे किया, प्रद्युम्न जी का विवाह कैसा किया, सब आप सबका ही ले हैं, आपका घर से कोई नहीं ले जाएगा, ये कौन से बड़ी भारी बात है।
तो उनका सिर झुक गया, आज उर्जिन ने तो नहीं चिड़िया समझा कि उर्जिन को हरण किया घर चढ़ गया।
और देखो तो अरे अर्जुन लेकर के भाग रहा है ना, भाग रही है तुम्हारी बहन, भाग रही है वही तो भगा रही है। तो इसका मतलब है कि पीछे से कोई बात गुप्त चुप्पे हुई होगी और उससे बातचीत हुई होगी, इसलिए तुम्हारी बहन ने अर्जुन को बिगाड़ा है। तो इसमें क्या बात है, ये छत्रियों का वीरों में ऐसा होता है। तुमने पहले क्यों नहीं कहा जो भीतर से तुम सब लोगों की यही इच्छा है? पिताजी की भी देखते हैं कि वही कुछ नहीं बोल रहे हैं, उग्रसेन महाराज कुछ नहीं बोल रहे हैं, मैया कुछ नहीं बोल रही है, हमारी रोहिणी मैया नहीं बोल रही, भाभिया कुछ भी नहीं बोल रही। तो मैं कुछ समझ नहीं पा रहा था। ओ तुम सब लोगों का मिल करके ऐसा ठीक है जो तुम लोग कर रहे हो, तो ठीक है, अच्छा जाओ उनको बुला लो। अच्छे तो कृष्ण गए अर्जुन को, उन्होंने पाप पाप इधर आ जाओ उधर आ जाओ। तो फिर कृष्ण वो खड़े हो गए अर्जुन, फिर दोनों को ले आकर के फिर द्वारका नहीं जाया गया और बड़े धूमधाम के साथ हिस्सा ली। इस प्रकार की कथाएं हम लोगों ने अभी कुछ ये पाठ किए हैं, आगे भी ये सब कथाएं हूं बड़े मनोदोग के साथ में आज सुने। आज शाम तक कथा समाप्त होने वाली है, जो रह जाएगी वो कल सवेरे होगी और उसके बाद में हम लोग इसका पूजा करते हैं। आप लोग बड़े प्रेम के साथ में आगे की कथाएं श्रवण करें। आप एकादश स्कंद में हम लोग प्रवेश करें, वो कृष्ण की ये जो भक्ति है जिसमें कि इंद्रदुम्न महाराज जी चित्र क्या अब चित्रकेतु महाराज जी वृत्रासुर हुए हैं, प्रहलाद महाराज जी हुए हैं, उद्धव जी जैसे भक्त हुए हैं, गोपियां जैसी हुई हैं, इन लोगों ने कृष्ण को कैसे पाया? बद्ध जीवों के लिए एक दशम स्कंद में नहीं बतलाया गया ऐसा प्रेम नहीं होने से नहीं होगा, ऐसा प्रेम कैसे होगा, उसका कर्म विकास क्या है इन पद्धतियों का, कैसे हम कृष्ण को प्रेम पूर्वक पा सकते हैं, उसकी पद्धति एकादश स्कंद में पर कुछ लीलाओं का रहस्य द्वादश स्कंद में भी बतलाया गया। इस चीज को धीरे धीरे हम लोग आज इसका वर्णन करेंगे। आप लोग भागवत के तह में जाने की चेष्टा करें और लोग यहां पर कृष्ण की कथाओं को अतिरंजित करके इधर उधर की कथाएं कहते हैं, हम लोग ऐसा नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि आप लोग शुद्ध रूप में श्रीमद् भागवत की कथाएं सुनें और उसमें प्रवेश करके उन साधनों को अपना करके इस जीवन में सुखी रहें, संसार में रहें। जो जहां है स्थान स्थित आत्मानी, जो जहां है उसी स्थान में रहे, किंतु भगवान का भजन करें। पांडव लोग भी तो गृहस्थ थे, यादव भी गृहस्थ थे,
गोपियां भी गृहस्थ ही थी, सभी लोग तो गृहस्थ थे, मुस्लिम लोग त्यागी थे। इसमें त्यागी हो चाहे त्यागरागी हो चाहे गृहस्थ, भगवान का भजन करते हुए क्रमशः संसार से ऊपर बोलिए। संसार में रहना का मतलब ये नहीं है कि आप सख्त होकर के उसे जकड़े रहे, नहीं, जीवन निर्वाह के लिए संसार में है, ये विश्व ब्रह्मांड प्रभु का है, ऐसा समझ करके इन चीजों के साथ ही भगवान की आराधना करें, और नहीं तो मकड़ी की जाल में फंस कर उसे कभी भी निकल नहीं सकते। इसलिए श्रीमद्भाव को पोषण करके कैसे साधन भजन है वैसा साधन भजन करके हम लोग इस संसार से उपरक्त होकर के भगवान के चरण कमलों को पा सकें, इसलिए हम भागवत श्रवण कर रहे हैं। यश तो आप लोग आगे की कथा बंसा कल अब आगे एकादश और द्वादश चले गए। जैसे शिकारी होता है, अभी रखो उसकी शिकारी अपना शिकार खोजता है, अभी पूरी जगन्नाथपुरी में दिया वहां पर बहुत से फिगर हैं मल्ला, क्या कहते हैं निर्वाद रखे नलिया नदिया जिसको कहते हैं नलिया, उनका काम ही मछली मार, लाखों की संख्या है, तो जानते ही कि किस तरफ में मछली मिलेगी, शिकार मिलेगा, उधर ही नौकाओं को लेकर के जाते समझते हैं, और भर भर करके नौकाओं में मछली मार करके ना जंगल में आए शिकार जाता है, शिकारी जाता है शिकार करने, तो जहां पर शिकार नहीं होगा वहां पर शिकारी तो जाएगा नहीं, शिकार भी शिकारी भी अपना शिकार खोजता है, जहां उसका शिकार मिलेगा वहीं पर जाता है, माया भी अपना शिकार खोजती है, माया शिकारी है अपना शिकार खोज, लोगों को छल से बल से कैसे इस संसार में हम आसक्त करा रहे, विशेष करके वो व्यक्ति कि हमारा शिकार कहां मिलेगा, भगवान के की कथाएं जहां होती हैं वहां पर उसको शिकार मिलने की संभावना अधिक होती है, क्यों वहां पर अधिक लोग जाएंगे, उसमें से बहुत से ऐसे मिलेंगे जो हरि कथा में सो जाएंगे, बस उनको हम शिकार कर लेंगे, तो यहां पर अधिकता से शिकार हो सकता है, इसलिए माया वहां पर छत्र देश में आकर के आंखों के ऊपर में बैठ जाती है और अपना शिकार कर लेती है आसानी से, किंतु भक्त लोग बड़े चतुर होते हैं, माया से मन उस शिकार को शिकारी से बचा देते हैं, कैसे भगवन नाम कीर्तन के द्वारा, बीच बीच में वो लोग कीर्तन करते हुए सबको जगा देते हैं, माया अपना शिकार नहीं पाती, जरा बात भी आएगी कोई सुंदर एक कीर्तन दीजिए तो जैसे कि माया हम लोगों पर शिकार न कर ले, कथा हमको ले जा रही है आप लोग शांत हो सकाल हम लोगों की कथा एकादश स्कंध से आरंभ हुई बताया गया नवजोविंद्र पाठ्यान के माध्यम से मनुष्य जीवन में एकमात्र कर्तव्य है, एकमात्र और अंतिम कर्तव्य है भगवान का भजन करना, हम इस जगत में इसीलिए आए हैं, भगवान को भूल गए इसलिए, और जिसको हम सुख भी मान रहे हैं संसारिक और वैश्विक विषयों को, ये सुख नहीं है, ये दुख के समान है, कैसे है जैसे इंद्र अपने गुरु का अपमान करने पर सुकर जन्म लाती है और सुकर जन्म ला करके इस पृथ्वी में आए, काफी उनकी सुकरियां हो गई
संतति भी सुअर के बच्चे सब तैयार हो गए और उन रंग करके बड़ा आनंद मानने लगते हैं। समझते कि मैं सुखा हूं, इच्छा खाना मलमुक्त में पड़ा रहना और बाल बच्चों के साथ में उसी प्रकार से लगा रहना, ये जीवन की इसी कर्तव्यता उनको नहीं मानते। के बाद में ब्रह्मा जी आए, उन्होंने देखा अरे ये सुपर सुकन्यों के साथ में बाल बच्चों के साथ में इधर घूम रहा है, कारण ये तो सुपर नहीं, ये तो इंद्र है। अरे इंद्र तू यहां क्या कर रहा है, चलो हम लोग चले, आ जाओ। तो उन्होंने कहा कि तुम शुक्र है या तुम इंद्र है, वहां पर अमृत पान करता है, यहां पर क्यों सड़ा सड़ा चीजों में रहता है। तो देखिए मैं सरकार नहीं, मैं तो नहीं चाहूं, चलो मेरे साथ में, कोई नहीं मैं नहीं चलता, ये मेरी स्त्रियां हैं, ये मेरे बच्चे हैं, तो फिर सबसे मैं ले जाता। आज अच्छा एक एक बच्चे को लेकर के पकड़ करके और मारना आरंभ किया, रोता हुआ और ब्रह्मा को मारने के लिए चले, किंतु आकाश मार नहीं, क्योंकि कुछ कर नहीं पाता। अब चलेगा तुम्हारे बच्चों को तो मैंने मार दिया, तुम अब चलेगा नहीं, हमारे बच्चे फिर हो जाएंगे, एक साथ में 16 बच्चे हमारे होते हैं, कुछ दिनों में ही हम मनुष्य को एक बरस में बच्चा एक होता है नहीं भी होता है, और उनको वर्ष में 2-4 बार हो जाते हैं और 16-20-25 बच्चे भी हो जाते हैं, हमारे बच्चे हो जाएंगे, बच्चों को समाप्त कर दिया। इसके बाद में उनकी पत्नी आए थे, पत्नियों को भी मारना आरंभ किया। उन्हें कहा कोई चिंता नहीं, फिर पत्नियां भी हमारी हो जाएगी, अभी तुम मारे जाते हैं और कमंड उसे पानी प्रोक्षण करके बैठ जाओ, प्रोक्षण करके और ऊपर छोड़ दिया। सोने के साथ ही साथ अरे ये क्या है, मैं तो इंद्र हूं, सुखा का रूप अब नहीं दिखाई पड़ा, मैं तो इंद्र हूं, मैं तुम्हार स्वर्ग में कैसे अमृत इत्यादि का पान करता हूं और कहां यहां गंदी गंदी चीजों में रहता हूं। उन्होंने हाथ जोड़ करके प्रार्थना किया, प्रभु अब इस जगत में नहीं रहना चाहता, प्रोक्षण किया, इतना पानी देकर के अपने इंद्र स्वरूप में स्थित हो गए और उनके साथ में चले गए। हम लोग सबको बंद होना चाहिए, कथा में बैठा हुआ आपको नहीं चाहिए, कथा सुननी चाहिए, बंद कर दो कोई नहीं है। उसी तरह से हम यहां से है कि मैं जितने भी जीव हैं, चैटी पतंग गधे घोड़े सुअर पेड़ पौधे लताएं स्त्री पुरुष चाहे वो क्रिश्चियन ईसाई बौद्ध जो कोई मुसलमान कोई भी हो, वो सब बैठ के हम लोग वो लोग वृंदावन से आए हैं, भगवान को गुरु करके आए हैं और जब तक वहां पर नहीं हम पहुंचेंगे सुख नहीं हो सकता, प्रभु की सेवा में ही सुख है। इसी को उपाख्यान इत्यादि के द्वारा बतलाया, भगवान का भजन यदि नहीं करता है वो प्राणी बहुत उसका जन्म ही व्यर्थ गया, उसमें भी कृष्ण का यदि भजन नहीं हुआ, अब विशेष करके ब्रज में रहने वाले लोग किसी प्रकार से इनका जन्म हुआ है या विवाहित होकर कहीं आए हैं या जैसे भी इस ब्रज में है, यदि कृष्ण का भजन नहीं करते, विशेषकर के राधा जी के साथ में कृष्ण का भजन नहीं करते, उनका जीवन व्यर्थ है। इसलिए हम लोगों को भजन करना चाहिए। चार युगों में उन्होंने बतलाया कि कैसे कैसे भगवान का कैसे कैसे भजन होता है,
कौन कौन सा युग में कैसे उनका भजन किया जाता है, ये आगे बताए। अभी तो उन्होंने बताया वैष्णव कौन है, उत्तम भागवत कौन है। विष्णु दुर्भाग्य की संपत्ति नष्ट हो जाने पर भी जिसको कनिक भी खेद नहीं होता है, और विश्व ब्रह्मांड की संपत्ति मिलने से उनको इतना भी आनंद नहीं होता, कनिक मात्र रंच मंत्र भी जिनका चित्त सप्त में भगवान मिल गया है। कभी भगवान का दर्शन नहीं करते कभी रोते हैं, कभी भगवान का दर्शन पाते हैं हंसने लगते हैं, कभी आनंद में नित्य करने लगते हैं, कभी सब सुख दुख शरीर का छोड़कर के एकदम चुपचाप होकर के फिर पृथ्वी में लोग को करते हैं। ऐसे महाभागवत लोग जगत में कम दिखते हैं, होने से भी हमें तो नहीं दिखेंगे, जिनका इतना सौभाग्य है और भक्ति है वो तो देख लेंगे, हम लोगों के सामने वो नहीं आए, देख करके हम समझेंगे ये पागल है। मैं जब स्कूल में पढ़ता था बचपन में हाई स्कूल में, एक दिन मैंने देखा कि मेरी छुट्टी हो गई, शाम के समय में 6 बजे देखा, एक देखा केवल लंगोटी पहने, उम्र होगी 50-60 वर्ष की, और वो गलियों में राजे 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 करता है और लोट पोट कर रहा है। उसमें समझते तो कुछ समझता तो था नहीं, आंखों से आंसू की धारा गिर रही, वो दृश्य आज तक मैं भूल नहीं सका। यदि आज की स्थिति में होता ना तो उस महापुरुष का चरण बंदन कर उनकी धूली अपने संग में लगा देता और जीवन भर उनका साथ नहीं छोड़ता। वैसे आदमी समझ नहीं पाते हैं ऐसे महापुरुष जगत में विचरण करते हैं, कमी नहीं है ऐसे महात्माओं की, किंतु उनको चिन्हना पहचानना बड़ा भारी कठिन है। ऐसे महात्माओं का लक्षण विश्व महान की विपत्ति आ जाने पर भी कभी भी उनको क्लेश नहीं होता, और आनंद होने पर भी जाति का आनंद मिलने से उनको कभी भी वो तो एकदम भगवान के चरणों में निरत रहते हैं। ऐसे महापुरुष लोग बैठी है, ये पद भी सहज नहीं है, ये मुक्त होने पर भी ऐसे होती है, उनका लक्षण कर पाता है। अभी आगे वर्णन में आएगा, चार युग होते हैं और चार युगों में भगवान की आराधना चार प्रकार से होती है। इसमें भगवान भी जो युगावतार होते हैं चार प्रकार के होते हैं, सतयुग में शुक्ल शुक्ल माने सफेद हंस जैसे, त्रेता में रक्त, द्वापर में श्याम, और कलयुग में पीत वर्ण के, इन चारों का वर्णन करेंगे। उस समय लोग सतयुग में ध्यान के द्वारा उनकी आराधना करें, मंत्र है नारायण परा वेदा नारायण परा अक्षर इत्यादि, नारायण परो वासुदेव उनकी आराधना। उसमें के प्रधान ऋषि नर नारायण है और वामन इत्यादि जो है अवतार, ये सब उनके विभिन्न प्रकार के नाम होंगे। त्रेता युग में रामचंद्र जी को वर्णन नहीं किया, राम कृष्ण ये सब लोग युगावतार नहीं है, किंतु जब आते हैं तो युगावतार में प्रवेश कर जाते हैं, इसलिए साधारण रूप में बदलाया कि वो लाल रंग के होंगे, रक्त वर्ण उनका नाम भी होगा रक्त, और जग के द्वारा उनकी आराधना, इसलिए त्रेता युग में जगत के द्वारा उनकी आराधना। तो सुभा का मंत्र भी है उनको, इसके बाद में द्वापर युग, द्वापर युग में कृष्ण कहते हैं श्याम वर्ण के, ये कृष्ण श्याम वर्ण के हैं, काले नहीं श्याम वर्ण, और अपने सुंदर पीत कौशेय वस्त्र बंसी इत्यादि द्वारा रहेंगे सुशोभित होंगे, और लोग आसन के मार्ग द्वारा उनकी आराधना करें। अब कलयुग का है, बस कलयुग में कहते हैं जैसे सतयुग में शुक्ल मुक्ति का जन्म आविर्भाव हुआ, त्रेता में रक्तवर्ण का आविर्भाव हुआ, और द्वापर में जैसे श्याम वर्ण का और उनका नाम भी श्याम, ये श्याम अवतीर्ण में कर द्वापर के अंत में, अब उसमें जितने जीवा बता है उस समय के उस अंग में प्रवेश हो, उनकी आराधना भी अक्षर के माध्यम से। इसके बाद उन्होंने पूछा कि कलयुग का क्या होगा, तो कलयुग के लिए भी उन्हें लगता है, कलयुग के लिए बताया है कृष्ण वर्णम ईशा कृष्ण सांगा सांगा तथा पदम जब कलयुग संकीर्तन पराजय जगत ही सुमे सका कलयुग के लिए। अब कलयुग में जो अवतार है उसका वर्णन कर रहे हैं, उसकी उपासना कैसे होगी, तो वो कलयुग में उनको अवतार होगा होना होगा। त्रेता युग वाले जो रामचंद्र जी हैं वो कलि के में अवतार उनका नहीं हुआ है, इसलिए उनका यहां पर आराधना की बात नहीं। श्याम वर्ण जो है वो द्वापर युग में अवतरित में है, उनका श्याम नाम है और उनकी लीलाएं भी श्याम है, वो कलयुग में उन्होंने आविर्भाव उनका जन्म नहीं प्रकट नहीं हुआ, इसलिए कलयुग के लिए उपास्य नहीं। इसके लिए बतलाया कृष्ण वर्णन ईशा कृष्ण सप्त में जो कृष्ण 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 वर्णन करते हैं, अपना जिनके नाम के पहले कृष्ण नाम है कृष्ण चैतन्य, इसलिए पहला नाम और कृष्ण सप्त में कृष्ण कृष्ण वर्णन करते हैं और उनके नाम का पहला जो अंश है वो भी कृष्ण है, कृष्ण चैतन्य जिनका नाम है, ईशा कृष्ण जिनके अंग का रंग कैसा अकृष्ण अर्थात पीत वर्ण, क्यों ये पीत वर्ण हुआ उसका भी कारण उन्होंने दिखाया है, पीत वर्ण है और सांगा कृपार्थवन सांगो अस्त्रपार्थवन स्व अंग अंग भी है उपांग भी है अस्त्र है और पात्र है, उसको लेकर के आए हुए हैं। यदि कहें जो कृष्ण ही आए हैं तो कृष्ण हुए अंग, उनका उपांग कौन होगा, उनका अस्त्र क्या होगा, कलयुग में आए नहीं इसलिए उनको छोड़ दीजिए, ये कलयुग की उपासना। यदि राम को कहो तो उनमें लगाना पड़ेगा लक्ष्मण इत्यादि अंग उपांग है और तो उनका धनुषदार है, किंतु ये भी नहीं, और उनकी उपासना होगी त्रेता युग में जग के द्वारा और श्याम की होगी आसन से होगी, किंतु कलयुग का जो है होगा नहीं, इसलिए कलयुग में भी आप नहीं जाएगा, वहां पर होगा स अंग उपांग, अंग माने स्वयं कृष्ण चैतन्य, कृष्ण ही स्वयं राधा जी के भाव को लेकर के गौ रूप में प्रकट हुए, सब समय कृष्ण कृष्ण करते हैं, उनकी अंग कैसी है राधा जी के काम, जैसे राधा जी पीठ है ऐसे वो किया है क्योंकि वही लेकर के आए हैं, और उनके साथ में उपांग कौन है नित्यानंद प्रभु जी और अद्विता है, अस्त्र क्या है हरिनाम अस्त्र है, इसी अस्त्र के द्वारा किसी जीव को नहीं मारा, समस्त जीवों का एकदम बदल दिया, भाव नहीं बदल दिया, राधा कृष्ण में प्रेम लगा, और पात्र कौन सब दामोदर राय रामानंद सुभाष पंडित इत्यादि गदा इत्यादि ये सब लोग हैं, कैसे उनकी उपासना होगी मंत्र के द्वारा, वो मंत्र